תודה. טוב. קומן. ג'יו. מוקטה שמשת בנדנה. סת פרקר כי. השבתיון כבנדן שמוקטה ועד. תד בהווה. भगवान के स्वरूप गुण लीला आदि के भावना करते करते वह भाव युक्त होता है, भगवान को अपना स्वामी माता पिता या प्रेमी सखा आदि के रूप में मानने लगता है और इस कारण से उसकी उसका मन और उसकी आकृति भी भगवान के अनुसार हो जाते हैं। निर्दग्ध बीजाशय और उसकी समस्त वासनाएं इच्छाएं जलकर भस्म हो जाती हैं और वह निरंतर भक्ति योग में लगा रहता है। इस कारण से महीयसा भक्ति प्रयोगेण प्रगाढ़ भक्ति योग के द्वारा समेति प्राप्त करता है। अधोक्षजम इंद्रियों के अनुभव से परे श्री भगवान को जब भक्त अनुवाद जब भक्त सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तब मुक्त हो जाता है, क्योंकि निरंतर भगवान की लीलाओं के विषय में सोचता रहता है और उसका मन और शरीर आध्यात्मिक गुणों से युक्त हो जाता है। उसकी उत्कट भक्ति के कारण उसका अज्ञान और भौतिक चेतना तथा सब प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर भस्म हो जाती हैं। यही वह अवस्था है जब मनुष्य भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करता है। श्री प्रहलाद महाराज असुर बालकों को विद्यालय में उपदेश कर रहे हैं भक्ति का। तो यह प्रसंग लगभग उसका अंतिम अंश है। प्रहलाद महाराज ने प्रारंभ किया था कि बचपन में ही भक्ति करनी चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, क्योंकि उम्र अधिक होने पर भौतिक कार्यों में रहते रहते चित फंस जाता है और अनेक प्रकार की ऐसी चीजें आती हैं सामने जिनका मोह छोड़ पाना कठिन होता है। बचपन में कुमारावस्था में मन फ्री होता है तो उसी समय भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जप करना चाहिए, जो भी भक्ति का अंग है। इसी सिद्धांत को उन्होंने पूरे दो अध्याय व्यक्त किया और अब ये वर्णन कर रहे हैं कि जब भक्त भगवान की लीला गा करके कीर्तन करके कभी कभी नाचने लगता है, कभी हंसता है, कभी जोर से चिल्लाता है, कभी ध्यान मग्न हो जाता है, तदा तो उसका संबंध इस श्लोक से है। उस समय वह पुमान जीव मुक्त समस्त बंधन समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवत भावना में रहते रहते उसका मन और शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है। और महान भक्ति योग के प्रयोग के कारण उसकी समस्त इच्छाएं जलकर राख हो जाती हैं, तब वह भगवान के चरण कमल को प्राप्त करता है। श्री भगवान इस प्राकृत प्रपंच से परे हैं, अतः प्राकृत मन बुद्धि आंख हाथ नाक कान आदि से अप्राकृत भगवान को नहीं समझा जा सकता है, इसीलिए उनको अधोक्षज कहते हैं। अध अक्षज अक्ष का अर्थ होता है इंद्रिय, ज का अर्थ है जन्म, इंद्रिय का जन्म अर्थात इंद्रियों का अनुभव, इसको अक्षज कहते हैं। तो यह इंद्रियों का अनुभव, मन की तर्कना, वाणी के वर्णन शक्ति, ये सब जिनसे अधः नीचे रह जाते हैं, उन तक नहीं पहुंचते हैं, उनको अधोक्षज कहते हैं। पर ऐसे अधोक्षज को व्यक्ति कब प्राप्त करेगा, जो मन वाणी बुद्धि सबसे परे हैं, दिव्य धाम में हैं, दिव्य अवस्था में हैं, उनको प्राप्त तब करता है जब भक्त समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधन क्या है जीव के लिए? बंधन है वासनाएं, इस भौतिक जगत की वस्तुओं को भोगने की जो लालसा है, इसी को बंधन कहा गया है। जब तक ये लालसा है, वासना है, तो उसको प्राकृत शरीर ग्रहण करना पड़ता है, जन्म मृत्यु में पड़े रहना पड़ता है। तो यही है बंधन, अन्यथा बंधन बाहर कोई नहीं लगा है, बांध करके रखा गया है, वो वैकुंठ नहीं जा सकता है। कोई रस्सी बाहर से बांधी नहीं गई है, कोई लोहे की जंजीर नहीं है, बांध दिया गया है, नहीं जाएगा, कहीं भी जा सकता है। अप्राकृत जगत में भगवान के अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इस बंधन से मुक्त होना पड़ता है। ये मनोबंधन है, मन का बंधन, और मन में इस संसार को ही भोगने की लालसा है, यहीं पर सुखी होने का प्लान है, और अनेक प्रकार की योजनाएं वासनाएं हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब भक्त भगवान की प्रकार भक्ति में लगा रहता है, तो वह उस समय मुक्त समस्त बंधन, समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई रुकावट नहीं है भक्ति में, जो भी प्रतिबंध है भगवान की प्राप्ति में, जो प्रतिबंध है सब दूर हो जाते हैं। समस्त शब्द से लौकिक परलौकिक भोग वासनाएं सब समाप्त हो जाते हैं। बंधन, मुक्ति की इच्छा भी एक बंधन है। शुद्ध भक्त मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते हैं। बंधन से खुलने की इच्छा कैसे बंधन है, ये जानने की जरूरत है। संसार बंधन, जन्म मृत्यु, कर्म बंधन, इससे मुक्त होने की इच्छा, यह भी एक बहुत बड़ा बंधन है, और सबसे बड़ा बंधन है। क्योंकि जीव का स्वरूप है वह भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति करना ही उसका स्वरूप है। तो यह सोचना कि मैं मुक्त हो जाऊं, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाऊं, इस संसार से मुक्त हो जाऊं, तो इस भाव में भक्ति नहीं है, भगवान की सेवा की वृत्ति नहीं है। अपने आप अपने दुख से उब करके वह व्यक्ति मुक्त होना चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्त होकर के कहां जाना चाहता है, कहीं भी जाना चाहे, लेकिन उसे तो हमारा बंधन खोला जाए, हमको मुक्त किया जाए। तो इस दशा में भी वह अपने स्वरूप में नहीं होता है, भगवान की सेवा की वासना नहीं होती है, तो यह भी एक बहुत बड़ा बंधन है, जीव के स्वरूप को बांधे ढके रहता है। और इसके अलावा ब्रह्म लोक में जाने की इच्छा, या स्वर्ग में जाकर के वहां के संसाधनों को भोगने की इच्छा, ये सब पारलौकिक बंधन है। और लौकिक बंधन क्या है, यहीं पर भोगने की इच्छा, अमेरिका जाने की इच्छा, या इस संसार में कहीं भी बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी कार, बहुत बड़ा पद पाने की इच्छा, जो भी इच्छाएं लौकिक इच्छाएं हैं। और पारलौकिक इच्छाएं हैं, होती हैं कि शरीर छोड़ने के बाद हमको बड़ा लोक मिले, बड़ा विमान मिले, स्वर्ग मिले, खाने को अमृत मिले, ये सब बंधन है। जहां तक स्व की वासना, स्व का स्मृति है, जहां तक जीव को ये भावना है कि मैं हूं और मैं को सुखी करने की भावना है, भगवान से पृथक रख करके, भगवान से कोई संबंध नहीं और अपने को सुखी करने की जो भी उसकी भावना है, वो सब बंधन है। और जीव सुखी हो भी नहीं सकता किसी भी प्रकार से, भगवान के बिना वो स्वर्ग जा सकता है, चला जाए ब्रह्मलोक में चला जाए या कहीं जाए, सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने स्वरूप में नहीं है। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए और वह बेचारी मछली अपने सुखी होने का प्लान लगे करने, तो किसी भी उपाय से वो सुखी नहीं हो पाएगी जब तक उसे अगाध जल में नहीं डाला जाएगा। जल ही उसका जीवन है, उसी तरह से जीव का जीवत्व है भगवान की सेवा, भगवान का संपर्क। जब तक वह भक्ति भाव से भगवान की शरण में नहीं आता है, भगवान को नहीं समझता है, तो उसके सारे प्लान उसको और दुखी दुखी करते जाएंगे। जैसे मछली जल से बाहर हो जाए और वो सोचे कि अब थोड़ा मैं वायुयान में चढ़ करके हवा खा लूं, सुखी हो जाऊंगा, तो किसी मछली को वायुयान में लाद दिया जाए तो वो सुखी नहीं हो सकती है और तड़प तड़प कर मरेगी। या बहुत अच्छा भोजन दूसरा कराया जाए, बासमती का राइस खिलाया जाए उसे, खीर खिलाया जाए, रबड़ी या पुआ पूरी, तो किसी भोजन से क्या वो सुखी होगी? क्योंकि असली जो उसका जीवन है उससे वो दूर हो गई है, जल ही उसका जीवन है। तो जल से बाहर होकर के किसी भी उपाय से, किसी भी सुविधा से वो सुखी नहीं हो सकती। उसी तरह से हम लोग कृष्ण से अलग होकर के, कृष्ण को भूल करके किसी भी प्रकार की भौतिक स्थिति में, किसी भी प्रकार के सुख संपन्न स्थिति में सुख का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीवन है कृष्ण, हम उनके अंश हैं, उनके बिना सुखी होने का कोई प्रश्न नहीं है और मुक्त होने का भी कोई प्रश्न नहीं है। तो जब व्यक्ति भगवान के बारे में हमेशा सोचने लगता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं ग्रहग्रस्त इव क्वचिद हसति, एक ऐसी दशा होती है भक्ति में कि भक्त ग्रहग्रस्त की तरह उन्मत्त हो जाता है। जैसे किसी प्रेत बाधा होती है तो उस समय वह व्यक्ति कभी कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाता है, कभी चुपचाप हो जाता है, तो उसकी अजीब दशा होती है। तो जब कृष्ण भावना में भक्त प्रगति करता है तो वह कभी कभी हंसती, क्वचित हंसती, क्वचित आक्रंदते, कभी रोने लगता है, आक्रंदते, ध्यायति, कभी ध्यान में मग्न हो जाता है, बंदते जन्म, और कभी कभी सबकी वंदना करने लगता है। वह यही देखता है कि जितने जीव हैं सब कृष्ण की सेवा में हैं और कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण इनके हृदय में है, अतः वह किसी को भी प्रणाम करने लगता है, वंदना करने लगता है। भागवत में कहा गया है कि यहाँ तक कि भक्त कुत्ते को भी प्रणाम करता है और कुत्ता खाने वाले चंडाल को भी प्रणाम करने लगता है। और यदि अपने लोग हंसते हैं तो उसकी परवाह नहीं करता है, हंसते रहते हैं, इसको क्या हो गया है पागल, उन्मत्त की तरह हो जाता है। यह वह दशा है जब भक्त भगवान को प्राप्त करने की योग्य हो जाता है। सब जगह कृष्ण को देखता है, सबको प्रणाम करता है, ध्यान में मग्न होता है, कभी रोता है और कभी हंसता है, ग्रह ग्रस्त की तरह। और मुह श्वसन भक्ति हरे जगत पते, और बार बार लंबी सांस लेता है, भगवान की प्राप्ति के लिए तड़पता रहता है। जैसे कोई किसी को बहुत बड़ा घाटा लग गया हो, बहुत बड़े संकट में हो, तो व्यक्ति कभी उच्छ्वास लेता है, सोचता रहता है। इसी तरह भक्त कभी कभी उच्छ्वास लेता है और बोल उठता है अकस्मात, हे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। और कभी कभी बोलता है, हे जगन्नाथ, हे जगत पते, हे जगत का पालन करने वाले, हे समस्त विश्व के स्वामी, आप कहाँ हो, कब मिलोगे। यही दशा सद गोस्वामियों की वंदना में कही गई है कि हा कर, हे राधे ब्रज देव के चल लेते, हा नंद सुन कुत, आप कहाँ हैं, क्या कालिंदी के तट पर जो वन है उसमें है, वृंदावन में है, आप गिरिराज में है, कहाँ हैं, हमको मिलिए। तो इस तरह से भक्त लज्जा छोड़ करके गतत्रप और आत्ममति भूतवा, आत्ममति होकर भगवान में ही उसकी चित्तवृत्ति रहती है, और हरि जगत पते नारायण इत्यादि बोलता रहता है, हे नारायण, हे जगत पते, हे हरि, इस प्रकार से बोलता रहता है, निरंतर भगवत भावना में मग्न रहता है। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन, तब समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान की भावना में रहते रहते उसका शरीर और उसका मन उसके अनुसार हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, शरीर भी ऐसा हो जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरीर में ये सब विकार देखे जाते थे। वो इस भावना में एक बार थे कि रास लीला होने वाली है और श्याम सुंदर बंसी बजाए हैं और बंसी में मेरा नाम लेकर के पुकार रहे हैं। किसी गोपी की भावना में या राधा रानी की भावना में वे थे, तो वे सुने कि मेरा नाम श्याम सुंदर बोल रहे हैं। तो वे गंभीरा मंदिर में थे राधा भाव में, तो वहां से जाने की कोशिश करने लगे रास लीला में, पर किवाड़ बंद था। तो उनकी ये भावना हुई कि हमारे घर का कोई व्यक्ति किवाड़ बंद कर दिया है, तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका शरीर किवाड़ के छिद्र से पार हो गया, किवाड़ में थोड़ा जगह, थोड़ी सी जगह थी जिसमें कोई कीड़ा पार हो सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पार हो गए उसमें से। शरीर इतना छोटा हो गया, भावना की है कि मैं घर में बंद हूँ और मुझे जाना है, शरीर बिल्कुल छोटा हो गया और वो उससे पार हो गए। और कभी कभी वो शरीर बहुत बड़ा हो जाता था, तिगुना बड़ा हो जाता था। संधियों में, शरीर के संधियों में केवल चर्म भरा रहता था, हड्डी दूर हो जाती थी। मन की दशा तो थी ही कि मैं गोपी हूँ, और शरीर की दशा भी ऐसी हो जाती थी, कभी कभी कछुए के जैसे हो करके बाहर होते थे। भक्त की ये दशा होती है, उसका शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। तद भाव भावानुकृता सया कृते, भगवत भावना में उसी के अनुसार ही उसका शरीर और आशय हो जाता है। भगवान कपिल देव कहते हैं माता देवती से कि मेरा भक्त है, अपने लास्ट जीवन में तो अंतिम समय में भक्ति करते करते ऐसी अवस्था प्राप्त करता है कि उसे ये ध्यान भी नहीं रहता है अपने शरीर का। जैसे शरीर से कभी कभी कपड़ा गिर जाए, चादर गिर जाए, गमछा गिर जाए, तो पागल व्यक्ति को ध्यान भी नहीं रहता है, या प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति को ध्यान नहीं रहता है कि मेरा चादर गिर गया है, साल गिर गया है। इसी तरह से भक्त को ये पता भी नहीं चलता है कि ये प्राकृत शरीर कब गया, गिर जाता, या गिरता नहीं है तब भी वो इसको भूला रहता है, इसमें उसकी अभिमति नहीं होती है। यही है कृष्ण भावना के अनुसार शरीर और मन का होना। इस दशा में भी वह भक्ति में लगा ही रहता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब बहुत बड़े भक्त हो गए, महंत हो गए, तो अब जप नहीं करेंगे, अब भागवत नहीं सुनेंगे, अब हो गया। नहीं, उस दशा में भी भक्ति प्रयोग चलता रहता है। भक्ति योग तो सुने होंगे, भक्ति प्रयोग नहीं सुने होंगे, लेकिन यह है प्रयोग। भक्ति द्वारा पूर्ण रूप से भगवान के साथ जुटे रहना, तो उस दशा में भी, मुक्त दशा में भी वो भक्त भक्ति में लगा रहता है। तो महीयसा भक्ति प्रयोग, महान भक्ति प्रयोग के कारण वो अधोक्षजम समेति प्राप्नोति, तो भगवान को प्राप्त कर जाता है। यद्यपि भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, वे अप्राकृत हैं, दिव्य हैं, पर भक्त का मन और शरीर दिव्य हो जाता है, इसलिए प्राप्त कर लेता है। मन भगवान को नहीं पकड़ सकता, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि तब भगवान का चिंतन कठिन है। जब मन पकड़ेगा ही नहीं तो चिंतन करना बेकार है। मन भगवान को नहीं पकड़ सकता, लेकिन जब मन भगवान के चिंतन से दिव्य हो जाता है तो भगवान स्वयं उस मन में आते हैं, तो भगवान को पूरा पकड़ भी सकता है और भगवान मन में आ जाते हैं। निरंतर भक्ति योग में लगे रहने की आवश्यकता है। जो भक्त भगवान की निरंतर पूजा करते हैं, रोज रोज करते हैं, तो उनके हाथ है, और सबके हाथ जैसे नहीं होते हैं, हाथ दिव्य होता है, वो पैर दिव्य होता है जो भगवान की परिक्रमा करता है या भगवान की सेवा में चलता है। कोई भी इंद्रिय, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, जो भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, एक दिन अपने प्राकृत स्वभाव को खो देते हैं और भगवान जैसा उनका देह, उनका मन सब कुछ हो जाता है, तब वे देवो भूत्वा देवम यजेत, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी जिज्ञासा होती है ना कि हम कब भगवान को प्राप्त करेंगे, तो जदा, जब ऐसे होंगे तदा, इस दशा में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान को पाना एक दृष्टि से कठिन है और दूसरी दृष्टि से बहुत सरल है। किस दृष्टि से? भक्ति की दृष्टि से। हम भक्ति करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम चावल खाओ, चावल, और वो जानता है चावल देखा, लेकिन कह दिया जाए कि चावल पहले पैदा करना पड़ेगा, चावल उत्पन्न करो तब खाओ, और वह चावल उत्पन्न करना नहीं जानता है, तो चावल प्राप्त नहीं करेगा, गेहूं प्राप्त नहीं करेगा। पृथ्वी रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो उत्पन्न करना नहीं जानेगा तो नहीं खा सकता है। पृथ्वी में सब अन्न है ना, लेकिन पृथ्वी को पहले जोतना पड़ता है, धरती को उसमें बीज डालना होता है, तो वह बीज कई गेहूं को निकाल लेता है। अगर कोई पृथ्वी को डायरेक्ट खोदे, खोदता चला जाए कि कहीं कहीं गेहूं रखा हुआ है, मिलेगा जरूर। और मान लीजिए कोई व्यक्ति को इतना डायरेक्शन दे कि सारा गेहूं पृथ्वी में है और सब चावल पृथ्वी में है, तुम उसे निकालो, पर निकालने का उपाय भी होना चाहिए ना। पृथ्वी में गेहूं है लेकिन कई टन गल्ला निकालने का उपाय है ना, खेती करना है। जैसे उपाय से व्यक्ति पृथ्वी से अन्न निकाल लेता है, और पानी सब जगह पृथ्वी में है लेकिन उसको उपाय से निकालते हैं, बोरिंग करते हैं, मशीन लगाते हैं, फिर ऊपर टांगते हैं, तो इस उपाय से पानी घर घर में आ जाता है। उपाय किए हैं, उपाय नहीं जानने पर पानी प्राप्त करना कठिन है, अन्न प्राप्त करना कठिन है। जैसे गाय में दूध है, घी है, लेकिन गाय से दूध घी प्राप्त करने का उपाय यह नहीं है कि उसके शरीर को काटा जाए, जैसे कुछ दुष्ट लोग काटते हैं और मांस खाते हैं। वो गाभिन होती है और गाभिन होने के बाद बच्चा देती है, बच्चा थन में मुंह लगा करके पहना देता है, तो इसके बाद गाय दुही जाती है। दूध उसके शरीर में है लेकिन दूध को निकालने के लिए उपाय है, और दूध से फिर घी निकालने का उपाय है। कोई ऐसा नहीं कह सकता नहीं नहीं इसमें नहीं घी नहीं है, गाय में दूध नहीं है, गाय में केवल खून है, गाय में केवल खून है, इसीलिए हम खून पिएंगे, इसका दूध नहीं। और कुछ इतने बुरे लोग हैं यहाँ तक कह देते हैं गाय के खून से ही दूध बनता है, इसलिए दूध पीना और खून पीने में कोई अंतर नहीं। अब केवल बुद्धिहीनता कही जाएगी, इसमें और कोई विचार करने की जरूरत नहीं। जो भी हो, गाय में दूध है, उसे प्राप्त करने का उपाय करना पड़ता है। पृथ्वी में अन्न है, उसे निकालने का उपाय किया जाता है। वैसे ही भगवान सब जगह है वास्तव में, पर उनको प्राप्त करने का उपाय करना पड़ेगा। और इस युग में सबसे बड़ा उपाय है भगवान के नाम का बारंबार कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब उपाय हैं भगवान का, जस गाना, भगवान का ध्यान करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान की पूजा करना, जिससे धीरे धीरे योग्यता बढ़ती जाती है और पूर्ण योग्य हो जाने पर हम भगवान को फेस टू फेस देखेंगे, उनको प्राप्त कर लेंगे, फिर उनका दास बन करके या उनकी माँ बन करके या उनका पिता बन करके या सखा बन करके प्रिया बन करके हम उनकी सेवा करेंगे। यही है जीवन की सिद्धि। श्री प्रहलाद महाराज असुर बालकों को यह दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, वे सब भक्त हो गए, भगवान की भक्ति में लग गए। इसी पर हिरण्यकश्यपु को बहुत दुख लगा, उसका तो माथा खराब हो गया। जब गुरुपुत्रों ने जाकर कहा कि वो तो सभी लड़कों को बिगाड़ दिया, तब प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश किया बहुत, पर भगवान नरसिंहदेव प्रकट होकर के अपने भक्त की रक्षा किया और हिरण्यकश्यपु का विनाश किया। तो इसके द्वारा यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें भक्ति करने के साथ साथ प्रहलाद महाराज की तरह निर्भीक प्रचार होना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। जब असुरों के स्कूल में प्रवचन किया जा सकता था और सब भक्त हो गए, तो आज क्यों नहीं हो सकते हैं? केवल शुद्ध प्रचार की आवश्यकता है कि ठीक ढंग से प्रचार किया जाए। सभी भक्त हो सकते हैं, क्योंकि सभी कृष्ण के हैं। कृष्ण को भूले हुए हैं इसलिए दुखी हैं। सबको सुखी करने के लिए भगवान के प्रचार की आवश्यकता है। भगवान के बारे में साहित्य वितरण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के विषय में व्याख्यान देना, सब कई उपाय है। और तर्क वितर्क से बचना चाहिए। तर्क करने पर समय बर्बाद होता है, लोग कन्विंस भी नहीं हो पाते हैं। अपनी बातें जो शास्त्रों में हैं उसको उचित ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। तो श्री प्रहलाद महाराज को बहुत बड़ी सफलता मिली, यद्यपि उस सफलता के पहले बहुत बड़ा रिस्क था। हिरण्यकश्यपु जैसे भक्त द्रोही, भगवत द्रोही के शासन काल में भगवान का खुलम खुला प्रचार करना ये बहुत बड़ा दुस्साहस था, लेकिन प्रहलाद महाराज ने किया। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी दृष्टि दी है, सारे संसार में प्रचार करने की आज्ञा दिया उन्होंने और स्वयं किए। तो ये प्रहलाद महाराज की रीति है कि स्वयं भक्ति करनी चाहिए और प्रचार भी करना चाहिए। जब आत्ममति होकर कृष्णमति होकर के जीव गतत्र पर लज्जा छोड़ करके भगवान का नाम बोलता है, पुकारता है, रवती का अर्थ है पुकारना, चिल्लाना, क्योंकि भगवान कहीं दूर नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त के चित्कार को सुन करके वे पिघल जाते हैं। और कभी रोता है, कभी हंसता भी है। भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जिनको जिनका स्मरण करके भक्त कभी बीच बीच में हंसने भी लगता है। जैसे किसी भक्त को अगर यह स्मरण आ रहा है कि श्री कृष्ण माखन का मटका चुरा करके और गोपी के घर में कोने में छिपे हैं और इशारा कर रहे हैं कि हमको बताना मत, मैं तुमको भी दूंगा कुछ खाने के लिए, तो ये भावना करके भक्त हंसने लगता है। या कभी जरासंध के भय से भाग रहे हैं युद्ध भूमि से, मथुरा से, तो इसको भी सोच करके हंस सकता है, हंसी आ सकती है कि भगवान केवल भागने का नाटक कर रहे हैं। तो कभी कभी हंसी भी आ जाती है। भगवान की लीलाओं पर निर्भर करते हैं भक्त की क्या दशा होगी, हंसेगा, कभी रोएगा। और कभी इस भावना में कि मैं गोपी हूँ और मुझे घर वाले बंधन में डाल चुके हैं, मैं कृष्ण से मिल नहीं सकती, ये सोच करके वो रोने भी लगता है, क्रंदन करने लगता है। कभी बंधते जन्म और सारे संसार को कृष्ण भक्ति में निमग्न देखकर वह सबकी वंदना करने लगता है। अपना भाव ही उसको दिखाई देता है सब जगह, सब लोग भगवान के भक्त हैं और भगवान की सेवा में हैं, इस भाव से सबकी वंदना करता है। और विशेष करके भगवान भगवत भक्तों की वंदना तो करता ही है, सबकी करता है। तो इस दशा में वह सब प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, कलमश से मुक्त हो जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि जब तक ये भौतिक इच्छाएं हैं तब तक यही रहना पड़ेगा, और यहाँ की स्थिति भी एक समान नहीं रहेगी, भिन्न भिन्न दशाएं बदलती रहेगी। दूसरा शरीर मिलेगा और शरीर मिलेगा, चूंकि इच्छाएं बहुत हैं मन में, इसीलिए उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत शरीर लेना पड़ता है। 84 लाख प्रकार का शरीर भगवान ने बनाया है, तो एक एक शरीर में, एक एक प्रकार के शरीर में कई बार जाना पड़ता है, कोई अवसान नहीं है। तो बेटर यही है कि इच्छाएं समाप्त की जाए। इच्छाएं तभी समाप्त होंगी जब भगवत इच्छा भरेगी, भगवान में मन लगेगा, भगवान को पाने की इच्छा रहेगी। जब जीव समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तब भगवान को प्राप्त करता है। भगवान को पाने की इच्छा, भगवत सेवा की इच्छा, भगवान की भक्ति करने की इच्छा, ये भौतिक इच्छा नहीं है। ये इच्छाएं तो रहेंगी, लेकिन भौतिक इच्छा का अर्थ है भूत, पंच भौतिक इच्छा है, जो संसार को भोगने की इच्छा, संसार में रहने की इच्छा, यह भी एक बहुत बड़ी इच्छा है। कि ठीक है हम बॉम्बे में ही जन्म लें, हमको कहीं दूसरी जगह जन्म ना दीजिए, इस समय हमारा जो घर है यही रहना चाहिए, शरीर नहीं बदलना चाहिए। पर शरीर बदल जाएगा, स्थान की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, स्थिति की, परिस्थिति की आसक्ति, सभी आसक्तियां बंधन है। तो सब बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है और इच्छाएं धुल जाती हैं हृदय की, भगवान की सेवा की इच्छा रह जाती है, तब व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। कभी कभी भक्त प्रश्न करते हैं क्या इसी जीवन में कृष्ण मिल सकते हैं, इसका उत्तर है हाँ, पर ये कंडीशन होना चाहिए, हृदय की पूरी सफाई हो गई, सारी गंदगी निकल गई हो, सारी इच्छाएं चली गई और सब प्रकार की आसक्ति भी चली गई, बंधन खत्म हो गया, भगवान में ही मन तन्मय रहने लगा, भगवान में ही शरीर नियुक्त है सेवा में, भगवान की सेवा में हाथ लगा है, चरण लगा है, कान आँख सभी भगवान के ही, कोई दर्शन में, कोई श्रवण में, कोई सुनने में, भगवान के दर्शन में ही आँख लगी है तो आँख और जगह से मुक्त नहीं है। तो निरंतर या बार बार भगवान को देखने से उनको ही देखने की लालसा बढ़ जाती है और किसी को देखने की इच्छा नहीं रहती है। सुनने से, भगवान की लीलाओं को सुनने से भगवान ही कान में धस जाते हैं, मन में भर जाते हैं, तो इस दशा में जीव भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। भक्ति प्रयोग लेकिन होना चाहिए महीयसा, महान महीयसा भक्ति प्रयोग तो प्रगाढ़ भक्ति योग कहते हैं। महान भक्ति योग के प्रयोग से भगवान को पाया जा सकता है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कोई प्रश्न है इस संबंध में?
हरे कृष्ण महाराज, आपके सुंदर प्रवचन सुनकर बहुत प्रसन्नता महसूस हुई। एक मेरा एक प्रश्न है आपसे कि कृपया उसका आप समाधान करेंगे कि ये जो गृहस्थ हमारा जीवन है उसमें ये स्थिति को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं क्या, और ऐसा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
श्री प्रहलाद महाराज स्वयं एक गृहस्थ थे और गृहस्थ के बच्चों को ही सिखा रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक में कोई ये जिक्र नहीं है कि सन्यासी के लिए है या वानप्रस्थी के लिए है, ब्रह्मचारी के लिए। पुमान शब्द का प्रयोग है, पुमान का अर्थ है पुरुष जीव। तो कोई भी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी या सन्यासी, सबके लिए है। सबके लिए भक्ति योग कॉमन चीज है। भक्ति योग करने पर हृदय शुद्ध होता है, समस्त वासनाएं खत्म होती हैं और व्यक्ति भगवान को पा सकता है। सबके लिए है। इसी अध्याय में दिया गया है, प्रहलाद महाराज कहते हैं उसे पढ़ना चाहिए। ये पूरा दो अध्याय उपदेश है। तो पहले अध्याय में सिद्धांत का वर्णन है, खास करके आत्मा के स्वरूप का वर्णन, और दूसरे में मतलब सातवें अध्याय में भगवान के भक्ति का वर्णन।
महाराज, मेरा प्रश्न यह है जी, मैं बहुत दिन से मन में एक उठ रहा जी, भौतिक और आध्यात्मिक, ये दोनों में फर्क क्या है? मैं यहाँ पर आता हूँ तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में डिस्कशन होता है, तो एक्चुअली इसका क्या अर्थ तो मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। दैट्स आई वांट टू नो,
यहाँ आने पर क्या विचार होता है?
मैंने भौतिक और आध्यात्मिक दो विचारधाराएं जो रखा गया है ये, उसके बारे में हम बताइए।
भौतिक का माने होता है भूत से बनी हुई चीजें, उसकी इच्छा। जैसे भूत है पांच, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच भूत हैं, और इनसे बनी हुई सारी चीजें भौतिक कही जाती हैं, प्राकृत। और इनकी जो इच्छा करता है इसको भौतिक इच्छा कहते हैं। तो भगवान का मंदिर बनाया जाता है, तो भगवान के मंदिर में व्यक्ति को भगवान के चिंतन की, प्रणाम करने की, कीर्तन करने की शिक्षा दी जाती है। और भगवान का स्वरूप मंदिर में बैठाया जाता है, जिससे व्यक्ति देख सके कि अच्छा भगवान ऐसे हैं। तो प्रश्न होगा कि ये सब वस्तुएं भी, भगवान का जो देह बना, मूर्ति बना, तो वो भी तो भौतिक हैं, लेकिन भौतिक नहीं है शास्त्र के अनुसार। भगवान भौतिक वस्तु में प्रकट होते हैं, स्वयं मूर्ति में प्रकट होते हैं, तो इसीलिए उस स्वरूप को अर्चावतार कहा जाता है। अर्चा का अर्थ होता है पूजा। हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए कृष्ण मूर्ति में अपने को प्रकट करते हैं, इसलिए कि हम अप्राकृत रूप को नहीं देख पाएंगे, इसलिए भगवान प्राकृत वस्तु में अपने को प्रकट कर देते हैं कि ठीक है, तब तुम देखो, श्रृंगार करो, पूजा करो, भोग लगाओ, इतना कर सकते हैं। चूंकि हम अब तक भौतिक वस्तुओं में ही पूजा किए, जैसे हमारा शरीर क्या है, भौतिक है, लेकिन इसमें हम रोज कपड़ा पहनाते हैं, आयरन करके कपड़ा पहनते हैं, माला भी पहनते हैं, भोजन भी भोग लगाते हैं, देते हैं सब कुछ। तो भगवान सोचते हैं कि जब भौतिक वस्तु में ही मन लगाया हुआ है, तो भौतिक वस्तु में मैं अपने को प्रकट करूं, इसीलिए वो मूर्ति में प्रकट होते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति पूजा कहना तो एक अपराध है, ये भगवत पूजा है, भगवान की पूजा है। आप किसी महापुरुष को फोटो में देखते हैं, तो फोटो को अगर फूल चढ़ावे, अगरबत्ती दे या भोग लगावे, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि कागज को फ्रेम को भोग लगा रहा है, उस व्यक्ति को भोग लगा रहा है, दे रहा है, ये आदर है, भक्ति है। तो भगवान को मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है और भगवान को ही नमस्कार किया जाता है। श्री जगन्नाथ जी जैसे काष्ठ में प्रकट होते हैं, काष्ठ भौतिक है लेकिन जगन्नाथ जी भौतिक नहीं है। नहीं तो कोई आदमी सोचेगा ये बिना हाथ वाला भगवान कैसा है। उनके बहुत लंबे हाथ हैं, बहुत सुंदर भुजाएं हैं, उन भुजाओं से बांसुरी भुजाते हैं, शंख चक्र आदि धारण करते हैं। तो उनकी भुजाएं हैं और भक्त अपने भक्ति की आंखों से उनकी सुंदर भुजा को देखते हैं। वे नहीं देखते कि ये अधूरे हैं, पूरे अंग वाले हैं। वो भौतिक चीज देखता नहीं है, देखता है जगन्नाथ जी को। भक्त लड़ते हैं, जगन्नाथ जी हंस रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इनकी, ऐसे हाथ किए रहते हैं, भक्त को बुला रहे हैं, आलिंगन करने के लिए तैयार हैं। ये भगवान का स्वरूप है। मूर्ति पूजा कुछ और होती है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सर आशुतोष मुखर्जी एक बंगाल में बहुत बड़े नेता हो गए हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उनकी एक पार्क में मूर्ति है जो रंगी स्क्वायर पार्क है, क्या नाम है पता नहीं, तो मूर्ति है, तो वहाँ मूर्ति बैठा कर छोड़ दिया गया है, कोई पूछता नहीं है, केवल आया करके कौवे उस पर बीट करते हैं हमेशा, और सालों भर यही करते हैं। और उनके जन्म दिन पर एक दिन मूर्ति की सफाई होती है, और वो कैसे सफाई, लोहे के ब्रश से खूब लगड़ लगड़ करके जो साल भर कौवे हगे हैं उसको छुड़ाया जाता है सिर पर कहाँ कहाँ। और एक दिन सब लोग आते हैं तो उनके बारे में याद करते हैं, हमारे देश के लिए ये किए, ये महान है, ये हैं, और फिर दूसरे दिन से कौवों के लिए छोड़ देते हैं, चलो आओ। हम लोग जो मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं इस तरह की पूजा नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, ये भगवान की पूजा है। एक दिन भोग नहीं लगाने पर भक्त तड़पने लगता है कि आज ठाकुर जी खाए नहीं, आज नहीं किए, सोए नहीं, ये भगवत पूजा है। और केवल भावना की चीज नहीं है, ये साइंस है, यह विज्ञान है। तो भगवान प्रकट हुए हैं भौतिक वस्तु के रूप में, पर भगवान भौतिक नहीं है, वे दिव्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हो सकता था कि भगवान नृसिंह देव के पहले लोग कह सकते थे कि मूर्ति में भगवान नहीं है, पत्थर में भगवान नहीं है, लेकिन जब भगवान अपने को पत्थर से प्रकट कर दिए तो अब तो कोई तर्क बचा नहीं, अब तो मानना चाहिए कि भगवान पत्थर से प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट से पत्थर से प्रकट होते हैं, ये प्रकट होकर के दिखा दिया भगवान ने। भक्त की दृष्टि कुछ और होती है और नॉन डिवोटी की दृष्टि और होती है। तो अपने में भक्ति भावना भरनी चाहिए तो सब बात समझ में आ जाती है। भगवान को प्रणाम करने पर भगवान हमारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगवान का कीर्तन गाते हैं तभी सुनते हैं और उसको अप्रिसिएट करते हैं। भगवान को हम भोग लगाते हैं तो भगवान खाते हैं। ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जिनमें डायरेक्ट भगवान खाए हैं, भक्तों से बात किए हैं, बोले हैं। भक्ति उच्च होने पर भगवान अब भी रिसाय प्रकाशन करते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। तो ये मंदिर का वातावरण, मंदिर में जो भगवान की भक्ति है वो भौतिक चीज नहीं है, और भगवत भक्त भक्ति में रह करके यदि अपने परिवार का कार्य करता है भक्ति से जुड़ा रहे तो वो भी भौतिक नहीं हो पाता, उसका प्रभाव बंधन में नहीं डालता है, वो अभी मुक्त ही होता है, ये सिद्धांत है।
हरे कृष्ण महाराज, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि चार टाइप भक्त मेरे पास आते हैं, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे पसंद है, इसका कृपया।
हाँ, भगवान के पास धन प्राप्त करने के लिए कोई जाता है, कोई दुख में रहता है तब जाता है, मतलब पुकारता है, शरण में आता है। चार प्रकार के भक्त है, उनमें भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। ज्ञानी का अर्थ यह है कि वो जानता है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, और मुझसे प्रेम करता है, कुछ मांगता नहीं है, वो जानता है कि बिना मांगे ही भगवान सब कुछ दे सकते हैं, तो निष्काम होता है। जैसे मान लीजिए किसी के चार पुत्र है और चारों में से रोज एक कुछ न कुछ पैसा मांगता रहता है, तो बेटा तो वो भी है और पिता का स्नेह रहेगा, लेकिन कोई पुत्र यदि कुछ मांगे ना और पिता की सेवा करे तो उसे ज्यादा स्नेह होगा ही, और उसकी सारी इच्छाओं को, सारी आवश्यकताओं को पिता पूरा करता रहता है। तो ज्ञानी का ही स्वरूप है, ज्ञानी भगवान से कुछ चाहता नहीं है, भगवान सब कुछ पूरा करते ही हैं, वो भगवान से प्रेम करता है बस। तो भगवान को प्रिय है। पर दुख पड़ने पर भी भगवान को ही पुकारना ये बहुत बड़ी बात है। दुख में भी लोग सोचते हैं कि हमको ये आदमी सहारा देगा, ये हमारे काम आएगा, ये नेता हमारे फेवर में रहेगा, या ये देवता हम पर कृपा करेगा। बिरले लोग जो भगवान के परम भक्त होते हैं वही भगवान को पुकारते हैं। जैसे द्रौपदी दुख में थी, आर्त थी, उसकी साड़ी खींची जा रही थी, पर उसने अंत में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे द्वारका वासिन, मैं कौरवों के इस महासमुद्र में डूब रही हूं, मुझे बचाइए। तो भगवान ने बचाया। गजेंद्र ग्राह के द्वारा पकड़े गए थे, वे दुखी थे, वे पुकारे, भगवान बचाए। ध्रुव महाराज बहुत बड़ा राज्य चाहते थे, अपने पिता से कई गुना बड़ा राज्य, तो भगवान ने उनको दिया। श्री प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्त हैं, वे भगवान से कुछ भी नहीं मांगे, भगवान डायरेक्ट कहे इनको मांगने के लिए, मुझसे वर मांगो, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कि आप ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में कुछ भी मांगने की इच्छा अंकुर ना हो गए। भगवान से भी डायरेक्ट कहने पर भी नहीं मांगे। तो आज का भक्त रहता तो कहता कि ठीक है नरसिंह देव, हमको कागज और कलम ले लेने दीजिए, लिख लेने दीजिए क्या क्या इच्छा है, लिखने दीजिए, हम बाद में बताएंगे आपको, या बाद में फोन करेंगे, अगर सामने संकोच हो रहा हो तो बाद में आपको फोन करेंगे, हम बाद में मिलते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे हृदय में इच्छा का अंकुर भी न उगे, ऐसा वर मांगे। एक वर मांगे थे कि मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए, तो प्रहलाद भगवान ने कहा कि बेटा जिस वंश में तुम्हारे जैसा भक्त होता है तो उसके 21 पीढ़ी के लोग तर जाते हैं, तुम्हारा पिता तो दूसरी पीढ़ी में ही है, तो वो तो मेरे हाथ से मारे जाने से और मेरा चिंतन करने से वो मुक्त हो गया है मेरे धाम में, तुम चिंता मत करो। और कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण महाराज जी, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपका प्रवचन सुन करके। मैं प्रश्न करने के काबिल नहीं हूँ आपसे, इसका दुस्साहस नहीं कर सकता। मुझे मेरे मन में एक बहुत दिनों से एक शंका है, उस शंका का समाधान करना चाहता हूँ आपसे, अगर समाधान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रभु महाराज जी, हम जब कीर्तन करते हैं तो अंत में बहुत दंडवत के समय हम भक्ति देवी की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय और अनेक अनेक प्रकार के हम लोग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा प्रश्न नहीं, एक शंका समाधान के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इन सब से परे या इन सब से तुच्छ अयोध्या धाम की गिनती इस्कॉन संस्था में होती है, जबकि अयोध्या धाम एक ऐसा धाम है जहाँ की कृष्ण भगवान के ही रूप हैं रामचंद्र जी, जहाँ रामचंद्र जी का जन्म हुआ है अयोध्या धाम में, तो अयोध्या धाम जैसे अयोध्या धाम की गिनती क्यों नहीं होती है? क्या इसका इसका कारण क्या है और क्या आप इसको अपने दंडवत प्रणाम में शामिल कर सकते हैं? आगे इसके लिए आप कुछ पहल कर सकते हैं? अगर मेरे प्रश्न में कुछ गलती हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा, मैं एक दुस्साहस किया, क्षमा प्रभु।
नहीं कोई बात नहीं, आपका प्रश्न अच्छा है। बात यह है कि भगवान के धाम, भगवान के स्वरूप, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, तो कुछ का जय बोला जाता है, कुछ अपने साधना के अनुसार, भावना के अनुसार। और वैसे इसमें मना नहीं है, कभी 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 हम लोग बोलते हैं अयोध्या चित्रकूट धाम की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, पर सब समय अनिवार्य नहीं किया गया है, इसलिए कि एक अपना ट्रैक होता है उसी पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपासक भक्तजन हैं तो भगवान उन धामों की जय बोलते हैं, स्वरूप की जय बोलते हैं, उन सब सभी नहीं बोल पाते हैं, तो इसीलिए प्रभुपाद ने इसको रखा है। इसको निग्लेक्ट के रूप में नहीं समझना चाहिए कि अयोध्या को निग्लेक्ट किया जा रहा है। कभी कभी बोला जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी और मायापुर धाम ये भगवान कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो चैतन्य महाप्रभु से, तो इसलिए बोलते हैं वहाँ कृष्ण विद्यमान है जगन्नाथपुरी में। कोई भक्त कभी बोला तो कोई मना किया है? नहीं, कभी मना नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी एक अपना रास्ता होता है, ट्रैक होता है, उस पर चलते हैं। जैसे बस चलने का एक ट्रैक है, और रेल चलने का ट्रैक है, तो रेल को रोड पर नहीं चलाएंगे और रोड वाले गाड़ी को रेलवे लाइन पर नहीं चलाएंगे। कुछ कुछ ऐसे अंतर होता है अपने संप्रदाय का, अपने मार्ग का। भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी बहुत बहुत स्थान है, बहुत कुंड है, बहुत वन है, सबका जय नहीं बोल पाते हैं, क्या क्या बोले। जैसे बोला जाए द्वारका धाम की जाए, अब वहां पर फिर गोपी तालाब की जाए, गोमती गंगा की जाए, क्या क्या बोले, पर नहीं बोल पाते हैं। पर कभी कभी जब विस्तार से देर तक बोलना होता है तो सबको समाहित किया जाता है। हम तो बोलते हैं अयोध्या धाम, अयोध्या चित्रकूट धाम की जाए, प्रायः बोल देते हैं। और जहाँ भगवान का श्री विग्रह था वहाँ जरूर बोलते हैं, वहाँ जुहू में जरूर बोलते हैं, वृंदावन में भी बोलते हैं। पर यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के बस दो विग्रह हैं, एक वृंदावन बिहारी राधा गिरधारी जी हैं और जगन्नाथ जी हैं, तो इतना ही बोलते हैं। कोई मना ही नहीं है, कोई मना नहीं है कि मत बोलो, लेकिन जो चालू किया गया है, जो गुरु महाराज ने चालू किया है, तो उसी पर चलना ठीक है। अब नया नया क्या खड़ा किया जाए, जो मार्ग बताया वही ठीक है चलना।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज एक प्रश्न है मेरा कि जब शिव जी पार्वती जी को अमृत कथा सुना रहे थे, तो उसमें सुख ने सुन लिया कथा, तो ये जब पता चला शिव जी को, तो उसको मारने के लिए दौड़े, तो सुख जाके फिर अरणी के घर में प्रवेश कर गया, जो हालांकि उसने अमृत कथा सुन लिया था। तो बाद में वो सुखदेव गोस्वामी जब उनका जन्म हुआ, तो वो पहले से अमृत कथा सुन लिए थे, भगवान की कथा सुन लिए, तो जब जन्म हुआ तो ब्रह्म के प्रति क्यों आकर्षित हुए?
ब्रह्म भी भगवान का ही स्वरूप है ना, भगवान का निर्विशेष स्वरूप है वो, तो संसार में कहीं आसक्त नहीं हुए ना, कृष्ण में ही आसक्त थे। इनकी अंग प्रभा को ब्रह्म कहा जाता है, तो कृष्ण में ही आसक्त थे, प्राकृत धरातल से ऊंचे थे, ऊपर थे। ब्रह्म में आसक्त होना कोई माया की आसक्ति नहीं है, और ये कथा पता नहीं अमर कथा कहां से है। ये कोई पक्षी अगर मेरी कथा में हुंकारा भरने लगे, तो मैं उसको मारने दौड़ूंगा, तो क्या सबसे बेवकूफ शिव जी हैं जो कथा सुनने वाले को मारने दौड़े, और जिसको सुना रहे हैं वो पत्नी बेहोश सो गई है, मरना तो उसको चाहिए ना, एक थप्पड़ की जग जाए। क्यों सो रहे, क्यों सोई हो, कथा सुनी, और बेचारा सुख पक्षी अगर सुन रहा है उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए ना, कि शिव जी मारने दौड़े, ये सब हमको विश्वास नहीं होता है, शिव जी मारने दौड़ेंगे, कोई न कोई जोड़ लिया जाता है। इस संसार में कोई पक्षी हंकारी भरने लगे, या कोई कुत्ता सुनने लगे, तो उसी दिन टीवी में अखबार में न्यूज दिया जाएगा कि कुत्ता कथा सुना और हाँ हरी बोल कह रहा था, जय जय कह रहा था, है कि नहीं। हम लोग एक नगण्य जीव हैं, मनुष्य हैं, हम लोग इतना विरोध नहीं कर सकते कि भाई कथा सुनने वाले को मारने दौड़े, और जिसको सुना रहे हैं वो सोवे ठाट से। ये विचार क्या युक्ति संगत है, न्याय संगत है कुछ भी? शिव जी मारने दौड़े और उस पक्षी को कहीं जगह नहीं मिली, तो वो माता जी सो रहे थे, श्री व्यास देव की पत्नी उनके मुख में समा गया और गर्भ में चला गया। कई बातें ऐसी हैं जो जोड़ करके लोक में कह दी जाती हैं, तो लोग उसी को सत्य समझता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट वेदव्यास देव से सुने हैं श्रीमद् भागवतम, वे अपने मुख से बताते हैं। वो तो कभी नहीं बताए कि मुझे शिव जी ने सुनाया था और मैं उनके डर से भाग करके माँ के पेट में चला आया, ऐसे कभी नहीं कहे। तो लोग कहते हैं वो अमर कथा सुन लेते इसीलिए नहीं मरे। कितने बच्चे गर्भ से आते हैं, वो मर कर कहीं थोड़े आते हैं, जीवित ही गर्भ से बाहर होते हैं। और पूछिए अमर कथा क्या है तो पता नहीं क्या, अब तक पता नहीं हो, खैर शिव जी को पता होगा। अमर कथा, अमर कथा कुछ नहीं, ये भागवत ही अमर कथा है, यह दिव्य कथा यही है। ये अपने पिताजी से वे पढ़े, ब्रह्म में आसक्त थे, इसके बाद श्लोक सुने तो भगवान के रूप में आसक्त हो गए, लीला में आसक्त हो, और आकर के भागवत पढ़े, वेद व्यास देव ने पढ़ाया। कहीं एक दो बार भी कोई अवसर आता है तो बता, ये नहीं कहते हैं मैं शिव जी से सुना हूं। अजामिल प्रसंग को कहते हैं कि मैंने अगस्त मुनि के मुख से सुना है इसको, सुखदेव शरीर से सुने थे। तो समाप्त किया जाए ना। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।
हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम सभी भक्तगण परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। साथ ही में यहाँ पर और उपस्थित हैं परम पूज्य राधा रमण महाराज, तो उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज का प्रसाद श्रीमान अजय मालविया प्रभु की तरफ से है, उनके पिताजी के पुण्यतिथि पर ये प्रसाद स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो सभी भक्तगण उनके पिताजी के आत्म शांति के लिए और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम प्रभु जी को कि उन्होंने यह सेवा आज की है, तो प्रभु जी के प्रति भी हम एक बार आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं प्रभु जी से विनती करता हूं कि यहाँ आकर महाराज श्री का आशीर्वाद लें, और नहीं आए उनके परिवार से अगर कोई भी सदस्य उपस्थित है तो वे यहाँ पधार कर ये मंदिर से भेंट स्वीकार करें और महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। वे आ रहे हैं तब तक कल एकादशी है, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि जो प्रतिदिन मंगला आरती नहीं आ पाते हैं, कम से कम कल एकादशी के दिन मंगला आरती आने का प्रयास करें और एकादशी व्रत का भी पालन करें। परसों वामन द्वादशी है, तो वामन द्वादशी का जो उपवास रहता है वो एकादशी के दिन ही किया जाता है, तो आप एकादशी के दिन दोपहर तक निर्जला उपवास रखिए, तो उसमें वामन द्वादशी का भी उपवास आ जाएगा। फिर द्वादशी के दिन जो पारण का समय है उसी समय आप पारण कर सकते हैं। मंगलवार को वामन द्वादशी है। इसी के साथ पहले भी आपको बताया था कि मंदिर में भक्ति सदाचार एक प्रोग्राम नया चालू किया गया है। ये भक्ति वेदांत हॉल में प्रति रविवार को होता है। तो आप सबसे विनती है कि सभी भक्त या कोई भी जो भी इसमें भक्ति सदाचार में रुचि रखते हैं, हरे कृष्ण, पहले हम माता जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार कोई भी रविवार के प्रसाद वितरण की सेवा का लाभ अगर कोई भी लेना चाहता है तो ले सकते हैं। मंदिर के किसी भी ब्रह्मचारी से संपर्क करके या बाहर जो बैठे हुए कृष्ण शिष्य प्रभु हैं, बनवाली प्रभु हैं, कोई भी संपर्क करके इस मंदिर में सेवा देने का लाभ ले सकते हैं। मैं चर्चा कर रहा था भक्ति सदाचार का। तो ये भक्ति सदाचार का कार्य प्रोग्राम यहाँ चालू किया गया है भक्ति वेदांत हॉल में। 3:30 बजे से यह प्रोग्राम होता है प्रति रविवार। तो भक्त इसका भी लाभ ले सकते हैं। अभी सभी से निवेदन है कि 10:30 बजे से पहले कोई भी उधर प्रसाद के लिए नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो वहां खड़ा रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम यहाँ बैठकर कीर्तन करेंगे, वैष्णव भजन गाए जाएंगे और बहुत सुंदर कीर्तन होगा। तो सभी कीर्तन और वैष्णव भजन में भाग लीजिए। हरे कृष्णा। युवा भक्तों के लिए यूथ जो इस्कॉन यूथ फेस्टिवल होता है वो आज है। शाम को 6 बजे युवा फेस्टिवल है। तो सभी युवा भक्तों से निवेदन है कि वे इसमें उपस्थित रहें और अपने मित्रों को और अपने संबंधियों को भी जो युवा हैं उन्हें आमंत्रित कर लें। आते रविवार को 6 तारीख को रविवार के दिन प्रसाद बनाने की और वितरण करने की सेवा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आते रविवार को प्रसाद बनाने की और वितरण करने की सेवा हिजग्रेज लाल गोविंद प्रभु के ग्रुप द्वारा होगी। यह बोरीवली का जो लाल गोविंद प्रभु का ग्रुप है उनके द्वारा 6 तारीख रविवार को प्रसाद वितरण की सेवा है। हरे कृष्णा। अब सभी भक्तों से निवेदन है पुनः कि सभी मंदिर में ही उपस्थित रहें। भक्ति वेदांत हॉल में अगर आप प्रसाद के लिए जाएंगे तो वहां 10:30 बजे के पहले दरवाजा खुलने वाला नहीं है। तो आप यहीं उपस्थित रहकर कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा। बैठिए। हाँ सभी भक्त यहां पर बैठे रहें।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण हरे नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमः। बोलिए नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वेद। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वेंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prishaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Nama Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Deshatarine Namaste Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Siva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Jaya Shri Krishna Chaitanya